जी सिस्टर शाह आदि, आपको मेरी आवाज आ रही है?
आ रही है मरियम जी,
जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सबसे शादी, आप मुझे बताएं कि सबसे पहले जो बच्चे पैदा हुए थे इस्लामिक लैंड में, मदीना में, कुबा में,
जी
उनका नाम क्या है?
अब्दुल्ला बिन जुबेर नाम था, हजरत आसमा के
जी
बेटे थे जी।
जी आसन थी, माशाल्लाह। अब्दुल्ला बिन जुबैर इब्ने जुबैर, इनका इनका आपको पता है ना, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का री तर जो है लुआबे मुबारक उनके पेट में गया था, सबसे पहली चीज जो थी
जी
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीक। आपको इनका कुछ हिस्टोरिकल थोड़ा सा बैकग्राउंड पता है?
ये हजरत आसमा के बेटे थे और जुबेर बिन अवाम के, और ये हिजरत के बाद कुबा में पैदा हुए थे और नबी करीम
जी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए थे पहले, और आपने उसको पिलाई थी ये सब।
जी और इनका ही है वो जो हजाज बिन यूसुफ जो था ना
हाँ वो
कमांडर।
वाला भी आता है कि ये फिर उसको
जी
सूली पे चढ़ाए थे और फिर हजरत आसमा आई थी और उसने कहा था कि अभी तक ये सवारी नहीं उतरी, उसका पूरा मैंने पढ़ा है माशाल्लाह
जी सुभान अल्लाह। तो ये सबसे पहले मौलूद हिजरत के बाद थे इस्लाम में, तो ये हम सबको याद होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह,
थोड़ा सा
जज़ाकअल्लाह
मुझे बता
खैर।
दूंगी, हजाज बिन यूसुफ वाला जो बता रही थी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे प्लीज, ये मैंने नहीं सुना ये बात।
जी ये इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, हमने पहले भी पढ़ा है और आगे भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला सहाबा के जब आएंगे उसमें, कि हजाज बिन यूसुफ जो कमांडर अब्दुल मलिक बिन मरवान के टाइम पे थे मक्का में, तो वहां पर इनके दरमियान इख्तलाफ हुआ था, तो उन्होंने फिर इनसे थोड़ी सी ऐसे झड़प हुई थी और उसमें फिर उनको शहीद कर दिया गया था। तो ये थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा लंबा है, इंशाल्लाह ताला आज हम हदीस करें, ये रह गया था पिछली किताब सलाम से। तो मैं चाह रही थी कि ये नाम सबको आना चाहिए क्योंकि बहुत जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनका हमें फौरन याद होना चाहिए, इसलिए बस मैं चाह रही थी कि ये आपको बताऊं, इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। जी सिस्टर शाह हादी, सिस्टर शहनाज शाह, जी सिस्टर शहनाज शाह आप मुझे बताएं, पिछली दफा भी कुछ क्वेश्चन आ रहे थे हम्बुल माउथ हमने जो जिक्र किया था इन लॉज के बारे में, खलाकत का लफ्ज, तो इससे कुछ ये उनको इम्प्रेशन हुआ कि शायद जैसे ये देवर और इन सारे रिश्तों को देखते ही मौत का ख्याल आता है, तो इसका ये मतलब नहीं है, आपने इससे क्या समझा है? लफ्ज हलाकत से आपको क्या समझ आई है मौत से?
जी असल में यहाँ पे खिलवत की बात हो रही है कि अकेले में ना रहे, देवर भाभी का जो रिश्ता है या जेठ भाभी का जो है, तो इसके बारे में आया है ये, क्योंकि
जी
पर्दा तो आम तौर पे सब करते हैं राइट, लेकिन ये खिलवत वाली बात है कि अकेले में एक दूसरे के साथ गपें
जी
शपें
लेकिन
और
कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि जैसे इन लॉज को देखते हुए क्या जो देवर और ये सारे रिश्ते होते हैं उनके भांजे और इन सबको मौत का देखते हुए उनको इमेज आ रहा है कि शायद मौत है, तो इसका ये मतलब नहीं, हलाकत का लफ्ज ये कि
जी
हलाकत में जा सकते हैं दुनिया और आखिरत, अगर तो खलवत में हुए, देखिए खलवत में हुए तो बुराई की तरफ जाना है,
जाने
बुराई
का
की
मिलान हो सकता है बिल्कुल
जी, और अगर बुराई की तरफ चले गए तो फिर दुनिया और आखिरत की बर्बादी है ना, तो उस तरह मतलब
राइट 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 उसी
जी,
सेंस
तो
में
ये
है
थोड़ा सा
बिल्कुल
इसको समझना है क्योंकि वो उनको समझ नहीं आती, काफी कंफ्यूजन थी लास्ट टाइम, तो ऐसा नहीं कि उनको देखकर मौत का ख्याल है, लेकिन ये इसलिए कि अगर खलवत में पढ़कर जैसे दो
जी
के साथ तीसरा कौन है, एक मर्द और औरत के साथ तीसरा शैतान है,
शैतान
तो
होता है
जी
जी जी
उसमें अगर फिर बुराई में पड़ गए तो उससे पहले ही अल्लाह सुब्हान तआला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम फरमा दिया कि जाना अकेले में नहीं जाना, तो ये उस तरह है बुराई में पड़ के मौत की तरफ हलाकत की तरफ जा सकते हैं। ठीक है
बिल्कुल
अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मुझे ये बताएं कि मजलिस के जो आदाब है, मजलिस में आने के आदाब है, अगर मैं कहीं गई हूँ और कहीं जगह ना हो तो फिर मैं वापस आ जाऊँ, ये ठीक है कोई इस्लामिक गैदरिंग है? आशा
जी आप मुझे पूछ रही जी जी हाँ मतलब आप आपकी जगह है, आप कहीं गई है, आप ये कह रही है
जी, इस्लामिक गैदरिंग हो रही है कोई इस तरह
जी
की, कोई इवेंट है और मैं
हाँ
गई हूँ, मजलिस के आदाब में मुझे क्या आता है समझ के, अगर मैं देख रही हूँ कोई जगह नहीं मुझे मिल रही बैठने
जी
की
जी
तो
जी
मैं वापस
तो आपको जहां भी जगह मिले आपको वहीं पे बैठना चाहिए, अगर वहां भी नहीं है तो पीछे बैठना चाहिए, लेकिन जाना नहीं है क्योंकि ये रहमत की महफिल होती है और यहाँ पे फरिश्ते भी हाजिर होते हैं। और इसके बारे में एक और भी बात थी कि अल्लाह ताला जो है वहाँ पर मतलब दीन के चौके बातें हो रही होती तो ऐसी मजालिस में शरीक होने पर अल्लाह ताला इंसानों को माफ फरमाता है। जी जी ये बात याद आ गई। और यहाँ पे रहमतें होती है, ऐसी मजलिसों में तो बैठना चाहिए क्योंकि वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो जाते हैं, राइट। अल्लाह के फरिश्ते ऐसे महफिलों को घेर लेते हैं तो ये बैठ
खामोशी से जहाँ जगह मिले डिस्टर्ब ना करें, बैठ जाएं, क्योंकि जैसे आपने कहा बहुत बड़ी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे तीन आए थे बंदे और उसमें से सहाबा जो भी उनमें से दो को दो ने एक ने जगह पा ली उधर ही मिलके, एक ने पीछे बैठ गए, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या उनके लिए किया कि उन्हें पनाह दे दी कि आया है फ़आवाइलल्लाही फ़आवल्लाहु के अल्लाह सुब्हान ताला से उसने पनाह ली, तो उन्होंने उनको भी अल्लाह सुब्हान ताला ने पनाह दे दी। तो रहमत है फदल की तरफ है ना, पनाह का मतलब है। और दूसरे शख्स के लिए क्या आया कि शर्मा गए वो वापस जाने से, तो अल्लाह ताला ने भी हया कर ली कि अल्लाह सुब्हान ताला भी उन्हें माफ कर दे दूसरों की तरह ना, सुब्हान अल्लाह। तो इसकी जी जजाक अल्लाह कई सिस्टर अदीला जी सिस्टर अदीला सिस्टर अदीला आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। जी आप अनम्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर अदीला। अच्छा सिस्टर शहनाज शानी सिस्टर शहनाज
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं अभी ये बात कर रही थी कि अगर उठकर वापस चले जाएं, मुंह मोड़ लें, अगर मैं उठ के चली गई समझें कहीं किसी मजलिस में, तो इसमें क्या बड़ी बात क्या हो गई, क्या बड़ी बात हो गई अगर मैंने जगह नहीं ढूंढी और मैं मुझे मिली और मैं उठ के चली गई वहां से महफिल से।
जी तो इसका अगर उठकर चले गए तो ये है कि उस इंसान ने मुंह मोड़ लिया, और जो अल्लाह से मुंह मोड़ता है तो अल्लाह भी फिर उससे मुंह मोड़ लेता है, और फिर वो इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है कि उसने कोशिश नहीं की।
जी सुभान अल्लाह, देखिए कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला से उसने मुंह मोड़ा है। फअम्मल आखिरु फअरदा फअरदल्लाहु अन्हु कि अल्लाह ताला से उसने मुंह मोड़ा, अल्लाह की जिक्र हो रहा था, अल्लाह की बातें, इस्लाम की, दीन की, रसूल की, तो उससे मुंह मोड़ा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमें महफिल की क्या इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, उसकी क्या अहमियत पता चलती है जी सिस्टर शनाज
इस महफिल की? जी इससे ये पता चलता है कि ये जो महफिल है ये अल्लाह की रहमत की महफिल है, और जब इंसान इसमें जाए तो उसमें जरूर बैठे, वरना वो अल्लाह की रहमत से दूर हो सकता है।
जी अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत किसको नहीं चाहिए, अल्लाह ताला की माफी किसको नहीं चाहिए, तो सुब्हान अल्लाह इन महफिलों में, इन इवेंट्स में जरूर जाना चाहिए। बुलाया जाता है कि मैंडेटोरी है, आए आए, हमें खुद अपनी रहमत अल्लाह ताला की पाने के लिए और माफी तलब करने के लिए जरूर जाना चाहिए, अनलेस कोई जेन्युइन एक्सक्यूज हो तो फिर कोई बात नहीं, अदरवाइज ऐसे ऑनलाइन ऑन साइट भी होते हैं तो उसमें अल्लाह ताला की रहमतें हमको हासिल हो रही होती हैं। और फिर यहाँ से सबसे पहले भी बैठने की फजीलत पता चलती है कि आप सबसे आगे होकर बैठे हैं, हम सबसे आगे होकर बैठे हैं महफिल में। जी अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर सुल्ताना जी सिस्टर सुल्ताना अजमत
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अगर देखिए अगर मैं किसी भी जगह पर गई हूँ, किसी आम जगह की बात कर रही हूँ और कोई बैठा है उसको उठा दूँ तो ठीक है, मैं कर सकती हूँ, किसी बैठे को मैं उठा दूं कि आप उठ जाए मैंने इधर बैठना, ये बात ठीक है?
नहीं ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम, वो जाहिर है वो पहले से बैठा हुआ है तो उसे ऐसा नहीं है कि हम उसे उठा दें कि आप यहाँ से उठ जाए और मुझे बैठना है यहाँ पर।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है ये हराम है ना, हराम है।
जी हराम कहा गया
हमामा में आया है कि हम वैसे तो फतवा लगा देते हैं बहुत सारी चीजों में हराम के, हम फतवे लगा देते हैं कि ये हराम है वो, लेकिन इस बात का हमको कितना पे अटेंशन नहीं करते कि इतनी बड़ी बात है, हराम इसको करार दिया है, किसी को नहीं उठाना चाहिए। और अगर तहियतुल मस्जिद अगर हमने पढ़ लिया है, ठीक है, और फिर अगर मैं उठकर किसी जरूरी काम के लिए गई हूँ, अगर मस्जिद में हूँ, जरूरी काम के लिए वापस आई हूँ, कोई और बैठा है, उसको उठा दूँ, ये बात ठीक है? उसको उठा सकती हूँ मैं, सिस्टर सुल्ताना?
जी, उसमें इन्होंने उसमें बताया था कि अगर, हाँ जी, क्योंकि वो उसकी जगह थी, अगर हम उसमें वहां बैठे हुए थे, मस्जिद के अंदर है कि अगर वो वहां बैठे हुए थे तो वो है कि वो वापस आके, क्योंकि समझे उस जगह वो मौजूद है, अगर वो किसी किसी भी हाजत के लिए उठ के वहां से गया है तो वो वापस आके अगर वहां बैठना चाहता है तो वो उसका हक ज्यादा है कि वो अपनी जगह पे वापस बैठ सकता है।
जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो क्योंकि ये हकदार, जैसे आपने कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह,
जी
हकदार है ना वो, इसी तरह है कि वो अभी प्रेजेंट है अपनी जगह पर,
जी
वो
वो वहां पे
मौजूद है।
मौजूद हैं। जी
जी अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकल्लाह खैर।
वही
जी सिस्टर यास्मीन इकबाल,
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो सारी पर्सनल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ये सारी आम बातों की, प्लेसेस की बात हो रही है। अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है, किसी का ऑफिस है और किसी ऐसे किसी की अपनी कोई जगह है खास जहाँ पर वो बैठकर काम करता है, उसके बारे में क्या है? उसमें उठा सकते हैं या उसमें भी हराम होगा?
नहीं, उसमें हराम नहीं हो, क्योंकि अगर आपकी आपकी अपनी स्पॉट है, आप वहाँ जॉब करते हैं, आप काम करते हैं, और अगर कोई और वहाँ के तो नहीं बैठ सकता है, क्योंकि वो आपकी अपनी पर्सनल हो गई ना, फिर तो वो नहीं बैठ सकता वो इंसान, आप उसको
जी,
उठा।
जैसे आप कहीं अपनी जगह से उठ कर भी गए हैं आम जगहों में और वो आपकी जगह ज्यादा हकदार है वापस आकर बैठने के लिए, तो फिर इस तरह तो ये दलील भी है कि अपनी जगह पर कोई बैठ जाए तो उसको हटा सकते हैं। जजाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर सुल्ताना जी। सिस्टर यास्मीन इकबाल
जी
जी, आप ही का 1 मिनट नेम है, आप मुझे
जी
बताएं कि आप बच्चों के बारे में फिर आपका क्या ख्याल है?
बच्चे अगर बैठ जाए तो,
जी,
ये बच्चे अगर बैठ जाए तो आप
बच्चे को
उनको,
उठा दें, अगर बच्चे को उठाने के बारे में आप क्या सोचती हैं? यही लॉ चलेगा, यही रूल ठीक है,
नहीं
उठाना
बिल्कुल,
हराम होगा?
बच्चे को हटाना बिल्कुल मना, ये थोड़ी कि आप बच्चे को उठा के उसकी जगह पर बैठ जाए, ये भी गलत होगा।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखिए ना, जैसे आता है जमात में भी हमें कि जमात में अगर आगे बच्चे हैं, पहले नमाज पहली रो में आ गए हैं तो भी उनको आप नहीं हटा सकते, तो
बिल्कुल
इतनी
बिल्कुल
बड़ी इबादत की जगह पर भी नहीं कर सकते, तो फिर आम से भी यही सेंस इस बात की हम निकाल सकते हैं कि ऐसा करना सही नहीं है। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकल्लाह खैर। जी सिस्टर नफीसा,
जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस जो है 1407 जो आया है कि हिजरा अजनबी औरतों के पास ना जाए, इससे आपने क्या मफहूम आपने समझा है और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें?
इसमें उन्होंने यही कहा था कि जो जो हिजड़ा होता है वो औरतों के पास ना जाए, क्योंकि वो उसमें यही उन्होंने बताया था कि मुझे कि मतलब वो मना है औरतों के पास जाना उसका ना, क्योंकि वो कहते हैं कि जी इनकी तो कोई सेक्स नहीं होती है कुछ, लेकिन वो कहते हैं होती है इनमें भी ये सब कुछ, तो इनको भी औरतों के पास अकेले या जैसे भी है उनको नहीं जाना चाहिए।
अच्छा, उनको नहीं जाना चाहिए औरतों के पास,
जी
ठीक है। अच्छा, और इसको थोड़ा सा से नाहिद आप एक्सप्लेन करें।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जी वालेकुम अस्सलाम।
मैं इस मामले में ये बताना चाह रही थी कि जो हिजड़े जो होते हैं वो औरतों को और देखते हैं, उसको बयान करा उन्होंने जाके कि चार की इतनी मतलब इतनी मोटा जिस्म था, उसका जिस्म यूं था, तो ये चीज अल्लाह ताला को मतलब, इसलिए उन्होंने जो सहाबी थे उन्होंने उम्मे सलमा जो थी उन्होंने मतलब उन्होंने बताया था मेरे घर में एक महन्नत था, तो अब्दुल्ला बिन उमैया से बात कर रहा था, तो उनको ये बात सुनी तो उनको बड़ा दुख हुआ कि वो हुआ इस बात पे कॉन्शियस हो गई कि हिजड़े जो हैं वो जाके बयान करते हैं औरत की जिस्मानी कैफियत को दूसरों के सामने, ये पसंद नहीं आई थी, इसलिए मना किया गया।
जजाकल्लाह खैर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि हमें ये इस हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये अब तुम्हारे घर में ना आया करें, यानी इनसे पर्दा करना है। अक्सर ये कॉन्सेप्ट है हमारे इधर के हिजरों से पर्दा नहीं है, और वो कुछ सूरह नूर की आयात की दलील इस तरह भी देते हैं, तो इसमें ये बात डिफरेंट है और वो उसको इस तरह सही तरीके से नहीं मफहूम उसका बयान करते। सिंपल बात जो हिजरा है, खुनसा मुश्किल, इसको या ख्वाजा सरा कहते हैं, या इंग्लिश में अगर हम यूनिक कहते हैं, फेमिनेट कहते हैं, जो भी इनके नाम हैं, इनमें जो भी फिजिकल एक है अबनॉर्मेलिटी, जो भी अल्लाह सुब्हान ताला ने इनकी तख्लीक की है, उसका अगर हम देखें तो इसको ऐसा हम नहीं कह सकते कि इनका पर्दा औरतों के सामने, औरतें इनके सामने पर्दा अपना खोल सकती हैं, औरतों ने इनके सामने भी अपना पर्दा करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी एक पूरी जैसे एक्सप्लेन भी हुआ था क्लास में भी कि एक अगर एक मर्द की फीचर्स हैं, एक औरत है तो उसके औरत के सारे फीचर्स होंगे, हैबिट्स होंगी, सारा कुछ वो उसी तरह उनका होगा जैसे एक औरत का होता है, शरई अहकाम भी इसी तरह उन पर लागू होंगे जिस तरह एक मर्द के होते हैं दफनाने में, और जितने भी बाकी लॉज हैं मर्द के और इसी तरह औरत के, तो उनसे उसी तरह पर्दा है। थोड़ा सा सिस्टर राहत आप बताएंगी कि जो सूरह नूर की आयात है फिर उसमें जो आता है कि पर्दा कुछ लोग कहते हैं कि कर सकते हैं आप, खोल सकते हैं, तो उससे आप किस तरह फिर इसको रेकंसाइल करेंगी, आपको थोड़ा क्या समझ आई है 31 जो आयत है
उसमें? यही है कि औरतों, जब आयतों का अल्लाह ताला ने पर्दों की आयतें उतारती, हुक्म दे दिया, तो वो वाजिब और लाजम है, तो उनके सामने भी करना है आपने। और ये हिजरे जो बात हो रही है, तो चाहे ये मर्द है चाहे औरत, आपने आपको वो इजहार जिस तरह का भी करें, लेकिन अल्लाह ताला को उनका पता है कि अल्लाह ताला ने किस तरह इंसान की तहलीक की, तो आप वो आपका पर्दा लाजम है उनके सामने भी। इसीलिए तो कहा गया ना कि जब अब्दुल्ला बिन उमैया से बात कर रहे थे वो, तो उनको अच्छा नहीं लगा था, तो वो औरतों के बारे में बात कर रहे थे कि उनके पेट में बाल इतने दिखाई देते हैं, 8 बाल दिखाई देते हैं, इतनी मोटी ताजी है, तो इसका मतलब है कि वो उनके अंदर वो ख्वाहिशात हैं। तो सूरह नूर की आयतों में पर्दा की जब आ गई है तो वो हुक्म आ गया हमें।
जी बारकल्लाह माशाल्लाह, ये जो आपने ख्वाहिश की बात की है ना सुभान अल्लाह, और इस तरह की जो नोटिस करना है, इस तरह की ये बात है ना, उसमें आया है कि अब ताबीना गैरी उलिल इरबति मिन रिजाल, इरबा कि इसमें कोई फिजिकल डिजायर्स, नीड्स, कोई इमोशंस ना हो, ऐसे औरत की तरफ कोई इंक्लिनेशन ना हो या इस तरह की। ठीक है, तो सुभान अल्लाह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरह की फीलिंग्स वगैरह ना हो। तो उसमें भी ये है कि जैसे कुछ जिनकी बिल्कुल फीलिंग्स नहीं होती, बहुत बूढ़े भी हैं, डिसेबल्ड हैं, बेड रिडन हैं, या ऐसा कोई अगर हिजरा जिसके बारे में पूरा आप जानते हो कि कोई डिजायर्स ही नहीं है, तो फिर और बात है, अदरवाइज इन सबसे पर्दा है।
जी, फिर ये भी तो अल्लाह सुभान तआला ने हमें बता दिया अपनी आयतों के थ्रू ही कि चाहे औरत कह लो कि उसमें सेक्सुअलिटी भी खत्म भी हो जाए तो एंड में, लेकिन पर्दे का तो नहीं आया कि वो अपने आप को बेबाक करते जब पर्दा उतार दे, वो तो है ही नहीं है ना।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जी पूरा है इनसे पर्दा, इस हदीस का ये मफहूम है, और ये कि इनको ये भी उसी तरह अकाउंटेबल है अपने गुनाहों की, अपनी नेकियों की, जैसे एक आम इंसान है, तो इनको इनका भी अल्लाह सुब्हान तआला के आगे उसी तरह जवाब देना होगा दीन के मामले में। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर समरीन,
जी सिस्टर सॉरी मैं जवाब नहीं दे सकूंगी, पर सॉइलिंग हुई हुई मोबाइल।
जी कोई बात नहीं, आप ठीक है, अल्लाह सुब्हान तआला आप कुछ जी इधर बैल टॉक पे भी मुझे कुछ आ रहे हैं, लेकिन अपना नेम बताएं आप मुझे, जो सिस्टर्स कह रही हैं आप जवाब देना चाह रही हैं उनका, मुझे नेम इधर नहीं आ रहा फोन पे, मुझे प्लीज अपना नेम बताएं।
यास्मीन इकबाल है वो।
जी यास्मीन, आपसे तो मैंने वैसे पूछ लिया है, लेकिन चले आप मुझे बता दें, आप मुझे ये बताएं कि किसी सूरत में ना महरम के साथ रास्ते में बहुत थकावट की हालत में, मजबूरी की हालत में बैठा जा सकता है, कोई दलील है?
जी बता दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
जी सवाल पूछा था आपने, जब पूछा सूरह नूर कौन सी आयत है, सूरह नूर की सो आयत नंबर प्लीज बता दें।
नंबर 31
जी, 31 जी,
बहुत प्यारी आयत है वो। मैं यही जो जवाब दे रही थी राहत में, यही सोची थी कि ये उन लोगों के लिए जिनकी डिजायर नहीं है, इसमें हिजड़े नहीं आती, क्योंकि ये क्या करते हैं आपकी बातें हर घर में जाते हैं, फिर घरों में एक्सप्लेन करते हैं औरतों के लिए। जिस तरह नॉन मुस्लिम के साथ पर्दा है कि आप वैसे ठीक है एकदम बिल्कुल बापर्दा नहीं रहेंगे, मगर थोड़ा बहुत अपना जैसे चेहरा आप अपना वो जो जिस्म वगैरह नहीं, क्योंकि ये लोग फिर जाके लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं आपके बारे में आपके। इवन इसीलिए हमारे मजहब में मना है कि औरत
जी
हमारी बहुत आम बीमारी। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि ये रसूल की हदीस नंबर 1408 से इसकी दलील मिलती है कि अगर कोई थक जाता है तो उसको बिठा लिया जाता है, तो जब रसूल अल्लाह जो बिठाने के लिए कहा था तो बीच में कजावा होता है, एकदम मिल मिल के नहीं बैठते, मगर जैसे हमारे आजकल अस्तग़फिरुल्लाह मोटरसाइकिल पे उबर चल रही है और ये वो बिल्कुल मना है, मगर ये कि हाँ अगर थक जाए औरत, उस जमाने में तो बेचारी पैदल चलती थी, मेहनत करती थी, तो ये उन्हीं के इस हदीस से ये हवाला मिलता है कि आप बिठा सकते हैं। ये अस्मा बिन अबी बकर के रज़ी अल्लाहु के बारे में ये हदीस है, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान हुई
जी बारकल्लाह फी कि देखिए किसी भी मजबूरी की हालत में जहाँ पर किसी की हेल्प करने का आ रहा है कि वो इतना थक रहे हैं कोई, तो फिर ये दलील हम इधर से ले सकते हैं, और जब दूसरे भी साथ हों, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है रिलीजन वो एक मॉडरेट दीन है, एक्सट्रीमिज्म बिल्कुल भी, इट्स नॉट अलाउड व्हाटसोएवर, सो वी हैव टू बी मॉडरेट। अगर किसी को जरूरी है, जरूरत है, मजबूरी की हालत में हम कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक बिल्कुल भी जायज नहीं है। और जैसे आपने आरा दूसरी बता दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक्सक्लूसिवली था या पर्दे से पहले के काम थे, उनको भी सामने रखा जा सकता है, लेकिन ये है कि मजबूरी की हालत में ऐसे जवाब मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर नफीसा आप मुझे बताएं।
जी जी
जी कि आप अगर आपसे कोई ये पूछता है कि मुझे प्रूव करो कि एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर अपने शोहर की खिदमत करना, तो आप इसकी फिर मुझे दलील दें, प्रूव करें, तो फिर आप उसको क्या कहेंगी?
उसमें इन्हीं का यही वाली जो 1408 है हजरत अस्मा बिन्त का, यही हम दे सकते हैं कि वो घर के काम भी करती थी और उनके मतलब ऊंट और उनके घोड़े के लिए भी वो जो है वो सारा उनको पानी पिलाती थी, उनको चारा डालती थी और मतलब उनके लिए भी आटा वगैरह गूंथती थी, इस तरह सारे काम करती थी। तो ये दलील है हमारे लिए, अगर इसको मना होता तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते कि भाई तुम्हारी बेगम इतना क्यों उनको थकाते हो या इतना काम वो क्यों करती हैं, उनको तो जायज ही नहीं है या कुछ इस तरह से ना।
जी बारकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको क्या कहते हैं हदीस को?
ये हदीस मीनिंग मुझे समझ नहीं है कि क्या ये दलील है हमारे लिए कि इसमें औरतों के लिए मना नहीं है कि हम काम ना करें या
तो ये आप इसको क्या हदीस का नाम देते हैं? रसूल किस काइन में आती है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हो लेकिन उससे रोका ना।
हाँ जी, तो इसका जी अगर रोका ना हो तो वो हमारे लिए हम उसको अपने ऊपर अलाउ कर सकते हैं ना ये।
जी तो इसको हम कहेंगे तकरीरी हदीस।
जी सॉरी, ये हाँ ये मुझे भूल गया, असल में मैंने आज तैयारी नहीं की, अचानक मैंने देखा उसमें तो मैंने कहा चले आ जाती हूँ मैं भी इसमें ना, आई एम सॉरी।
ये एक है तकरीरी, एक है कौली और
जी ये तकरीरी है राइट। हाँ जी, जिसको मना ना करे।
जी जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली अगर आपको हस्बैंड हुक्म दे रहा है तो उसका हुक्म मानना फर्ज है। अगर तो नहीं कह रहा कुछ ऐसा आपके अपने ऑप्शन है तो वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर हुक्म वो दे रहा है तब भी आपकी ये जिम्मेदारी में आता है कि आप करें सारे काम, और हस्बैंड को भी चाहिए कि फोर्स ना करे अगर नहीं बीवी का दिल, तो इसमें दोनों तरफ से है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर शहनाशा आप मुझे इसमें से और लेसन बताएं, आपने और इस हदीस में क्या लेसन देखे हैं? हदीस नंबर जो है 1408 में आपने और क्या इसमें से लेसन लिए हैं?
I'm sorry, sister Miriam, क्या पूछा आपने?
जी, हदीस नंबर 1408 में आपने और क्या लेसन इसमें से देखे हैं? इस हदीस में
1408 में ये वही हदीस है अभी जो हजरत अस्मा बिन बकर की है, राइट?
जी, काम कर रही हैं इसमें, इससे आपने क्या देखा कि वो इतने सब्र से काम कर रही हैं? इससे आपने कुछ सीखा? और उनका रिलेशन आपस में, रिलेशनशिप हजरत जुबैर और अस्मा रजी अल्लाह अन्हा का?
जी, क्या मैं बता दूं, मैं बता सकती हूँ? आप बता दें जी, पता नहीं मुझे अब याद आया कि आप क्या माँ पूछ रही है। खावन का हुक्म मानना बीवी का फर्ज है, ये वाली चीज
नहीं,
यानी खावन को अपनी बीवी का भी लिहाज रखा जाए? और
जी ये हो गया,
क्योंकि बीवी के ऊपर अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है, सर ने ये बात भी बताई है कि अगर सजदा जायज होता तो वो खावन को सजदा करती, ये वाला पूछ रही है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो जज़ाकल्लाह खैर, वो हो गया ना कि आपका काम करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है औरत की, अपने घर की, अपने मियाँ की, और अगर वो कह रहा है अपने उनके रिश्तेदारों की भी, तो ये सब जो है ना उस पर जायज़ है, उस पर होगा, ये दलील की होगी है। मैं और आपसे कह रही हूँ कि और जैसे सिस्टर नाहिद आप बताना चाह रही हैं, आप बताएं कि और क्या लेसन इसमें?
मैं ये बता रही थी, जैसे वो कह रही थी ना कि सास, लोग कहते हैं बाहर लोग सास हो कहाँ हो,
उनका
हुक्म है। इस हदीस से दलील मिलती है कि शौहर जब जानवर की खिदमत कर सकते थे वो तो शौहर की माँ है।
जी जी, ये बात बताई थी सर ने मुझे भी याद
है। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और देखिए, और ये भी है कि वो कितने सब्र से इतना काम कर रही हैं, 2 माइल्स तक ऑन फुट वो पैदल चल रही हैं, इतनी फैसिलिटीज आज हमारे पास है, लेकिन हमारी कंप्लेंट देखनी चाहिए,
माशाल्लाह
सब्र से वो कितना काम कर रही हैं। और फिर उनका रिलेशनशिप कितना एक ब्यूटीफुल बताया है, हस्बैंड और वाइफ का, स्पाउस का क्या अच्छा रिलेशनशिप है कि वो शेयर कर रही हैं, उनको अपने कितनी गीरा की, कितनी फिक्र थी अपने हस्बैंड की, हजरत जुबैर
गैरत की फिक्र थी कि मेरे हस्बैंड को गैरत ना आ जाए। हाँ, रसूलुल्लाह तो बस बैठे कभी मना नहीं करते, उन्होंने अपनी तरफ से तो एहतियात करी ना उसमें भी।
जी, उनको कितनी इस चीज की भी फिक्र थी, उनका केयर देख रहे हैं हम यहाँ पे, केयर देख रहे हैं आपस में। और फिर हजरत जुबैर का भी देखें, उनसे उनसे प्यार मोहब्बत और एक उनकी केयर देखें कि वो भी कह रहे हैं कि मुझे ज्यादा ये तकलीफ दी है कि आप ये अपने सर के ऊपर जो इतनी इसकी खजूरों की जो कुर्सियां उठा के लाती हैं, इसकी ज्यादा मुझे है रंज और ये ज्यादा पेनफुल है मेरे लिए। और ट्रस्ट कर रहे हैं कि बैठ भी जाती तो कोई ऐसा मसला नहीं था। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर शाह हादी, आप मुझे बता दें, आपका आपको आवाज आ रही है? आपका म्यूट हो गया सिस्टर शाह हादी?
आ रही है मरियम
जी। जी आप मुझे बताएं, अगर मैं बैठी हूँ और मेरी 2 सहेलियां बैठी हैं और मुझे कोई बहुत जरूरी से अपनी एक सहेली से बात करनी है, 2 में से 1 से, तो फिर मैं क्या करूँ? मैं उसे सीक्रेटली कोई बात कह दूँ?
इसमें ये सरगोशी नहीं कर सकते ना, अगर 3 हो तो 2 आपस में सरगोशी नहीं कर सकते।
जी मना जात
मना है जी जी, मना जी। अगर यानी
वजह क्या है?
इसलिए कि फिर इंसान को शक होता है ना, और ये अदाब में से नहीं है ना कि हम इसकी बात करें इसी तरह की, कि ऐसा ना हो कि कोई मेरे खिलाफ कोई बात नहीं कह रही हो ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से मना फरमाया है।
बदगुमानी होती है ना,
बदगुमानी
हो सकती है, और फिर ये कि उसकी सबसे ज्यादा ये कि उसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, वो दुखी होगी इस बारे में कि शायद कोई मेरे बारे में बात हो रही है। तो सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी भी छोटी हमें मैनर्स बताए कि इससे भी किसी दूसरे मुसलमान का दिल ना दुखे। और अगर आप मुझे बताएं 2 से ज्यादा हो तो फिर
ज्यादा हो तो फिर कोई हर्ज नहीं है, फिर कर सकते हैं, यानी गैदरिंग और बहुत यार सारे लोग हो और लोगों में खल्त मल्त हो जाए तो फिर अगर बात करे तो उसमें फिर कोई हर्ज नहीं है।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फी, अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है फिर अगर 2 से ज्यादा हो। अब हमारा रिव्यू यहीं तक था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिव्यू हो गया है पूरा कंप्लीट। نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ تعالی سر ابو سیف کا دورہ قرآن ہوگا, مے 14 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, نیکسٹ منڈے سے 1 بجے. تو آپ اس میں جائیے گا دورہ قرآن میں, کلاس ہماری حدیث کی اور پھر ریویو نہیں ہوا کرے گا, رمضان میں کوئی ریویو نہیں ہے. اور پھر آپ سب نے ہمارے استاذہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے, وہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے, تو ہم نے سب نے رمضان میں بھی اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے سب نے. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج حدیث کلاس نہیں ہوگی بڑھاپا, اس کا مطلب بڑھاپا
آج کلاس ہے,
کلاس ہوگی, وہی پوچھ رہی ہوں نیکسٹ ویک سے ریویو. تو الگ ٹیسٹ, اس کا مطلب ٹیسٹ بھی نہیں ہوگا. چلیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
کلاس ہوگی کہ نہیں ہوگی آج حدیث کی؟ ہلو.